प्रातः क्लास को चार ग्यारह 1966 को शुक्रवार के दिन वाणी चल रही थी। सातवें पेज के मध्य बात चल रही थी। बाबा सभी सेंटर्स के बच्चों के लिए डायरेक्शन देते हैं, जो सबसे बड़े बच्चे हैं उन्हें अपने पास टैप रिकॉर्डर रखना चाहिए। अभी टैप रिकॉर्डर तो बंद हो गए, वीडियो चल पड़ा, में बाबा की एक्यूरेट आवाज भी होती है और दृष्टि भी होती है, और दृष्टि के आधार पर थोड़े वाइब्रेशन भी मिलते हैं। थोड़े वाइब्रेशन इसलिए कहा कि टीवी की जो दृष्टि है वो फिर भी जड़त्वमय तो है, फिर भी चैतन्य सन्मुख दृष्टि की याद दिलाती है। तो हर बच्चे के पास सर्विस के लिए, किसी समझाने के लिए, जो भी बच्चे सर्विस पर जाते हैं ये सब के पास पहुंचाना पड़े, सुनाना पड़े। बाबा का आवाज एक्यूरेट सुनाना पड़े। तो सभी सेंटर्स के सर्विसेबल, वफादार, फरमानबरदार, रूहानी बच्चों के प्रति माता पिता और बाप दादा का याद प्यासी का, ये टैप लेकर आनंद किशोर आ रहा है। जो लखनऊ में जाने वाला है वो जो कुछ भी उनका वहां होगा, जगदीश के साथ काम दिया छपाने का या उनसे राय लेनी होगी तो राय ले लेंगे। उनके साथ ये टैप और टोली बच्चों के लिए भेज रहे। अभी सबके लिए तो टोली भेज भी नहीं सकते हैं, जिस जिस सेंटर में वो जाकर जो रहते हैं वहां के लिए थोड़ी टोली भेज देते हैं। ये टोली भी आगे चल करके आहिस्ते आहिस्ते बंद हो जाएगी। समझा ना? क्यों बंद हो जाएगी? ये टोली देना, टोली खाना, ये अच्छा भी नहीं लगता है। बच्चों की रूहानी स्टेज बढ़ रही है, रूह की स्थिति में स्थित होने की प्रैक्टिस बढ़ रही है, तो ये टोली खाना, टोली देना क्या अच्छा है? जो भी दिल्ली में जाए, एक सेंटर के पास टोली जावे मधुबन से बाबा से, और दूसरे सेंटरों को न मिले, ये बात भी तो बाबा को अच्छी नहीं लगती है ना? क्यों? दूसरे सेंटरों को क्यों नहीं मिल सकती? मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? मिल सकती है। एक सेंटर पर बाबा किसी बच्चे को भेजें और दो चार सेंटर के आसपास के बच्चे आ जाएं, तो जो भी आ जाएंगे उनको तो टोली मिल जाएगी। क्या सबको मिल जाएगी? तो ये अच्छा नहीं लगता है। तो बताओ, अभी सभी सेंटर्स के लिए कितनी टोली बनानी पड़ेगी? बाकी बोलो तो हम भूंगरा बना सकते हैं, बुना हुआ चना। वो जो खांड भूंगरा होता है ना, हाँ, वो हम बना सकते हैं। जो एक एक को एक एक मिल जावे, क्योंकि एक भी ये सिर्फ सौभाग्यशाली के हाथ में मुख में पड़ सकती है। क्योंकि शिव बाबा बच्चों के लिए टोली भेज देते हैं, वो तो एक कुण का भी होता है ना, भक्ति मार्ग में थोड़ा कुण का प्रसाद भी लेते हैं ना। ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा मुख में डालते जाते हैं। कोई बच्चे हैं जो टोली अभी याद करते हैं, तो जो जब भी कोई जाएंगे तो ऐसी टोली भेजें जो सबके मुख में पड़े। अभी उस बेहद की टोली की ऐसी इन्वेंशन निकाल रहे हैं।
क्या?
भक्ति मार्ग में जो टोली होती है वो हद की होती है या बेहद की होती है? हद की। अब इन्वेंशन कौन सी निकाल रहे हैं कि ऐसी टोली निकालें जो सबका मुंह मीठा हो जावे। खंड भूंगड़ा भी देखते हैं बनते हैं या और कोई चीज बन जाती है। किसी ने कुछ कहा रेवड़ी भी नहीं, क्योंकि ये रेवड़ी भी बहुत कुछ खा जावेंगे। कुड़कुड़ी होती है ना, आज कभी जब तक अढ़ाई तीन शेर कुल न हो तब तक पूरा तीन नहीं पड़ेगा। फिर भी कुछ न कुछ युक्ति करेंगे जो सबके मुख में जब भी कोई जावे तो सबके मुख में पड़े। और सबके इस मुख में पड़ेगी तो बाबा तो खुश होंगे ना। बच्चे भी खुश होंगे कि बाबा ने शिव बाबा ने भेजा। तो उस समय भी जब खाएंगे शिव बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे तो कितनी कमाई हो जाएगी। ये भी तो कमाई के है ना। बाबा जो भी याद देते हैं सौगात देते हैं ये किस लिए देते हैं? है शिव बाबा की याद आती रहे तो देखेंगे सौगात को बार बार देखेंगे कि शिव बाबा ने दी है। ये सौगात हमें शिव बाबा से मिली है। अच्छा शिव बाबा को एक दफा भी याद किया ना तो भी बड़ी कमाई हो जाती है। ओम शांति। आज का रात्रि क्लास है चार ग्यारह 1966। कोई मनुष्य है जो मनुष्यों को बैठे पढ़ाते हैं, पढ़ाने के लिए बैठते हैं सिखलाते हैं खाते हैं पीते हैं खेलते हैं कूदते हैं लड़ते हैं झगड़ते हैं, ऐसे भी होता है ना। और यहाँ कौन बैठा है, है? अरे बाप बैठा है। बात किसकी हो रही है, टीचर की बाप की या सदगुरु की? टीचर की बात हो रही है। मिसाल दिया दुनिया का कि कोई मनुष्य होते हैं, मनुष्यों को पढ़ाते हैं, या सुप्रीम टीचर पढ़ाते हैं, तो बच्चों के साथ बैठेंगे ना कि नहीं बैठेंगे, सिखलाएंगे ना, सिखला देंगे। खाते पीते हैं या नहीं खाते पीते हैं बच्चों के साथ? खाते पीते भी हैं, खेलते हैं, कूदते हैं,
लड़ते झगड़ते हैं,
ऐसे भी होता है ना। गुप्त वेश में यहाँ बाप बैठा हुआ है, गुप्त वेश में बैठा हुआ है तो कोई पहचान पाते हैं, कोई नहीं पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं तो लड़ेंगे झगड़ेंगे ना है? साधारण समझेंगे, भगवान के रूप में निश्चय नहीं बैठा है तो कभी कोई बात को लेकर लड़ेंगे झगड़ेंगे ना। अब ये गुप्त वेश है, वास्तव में तो गुप्त वेश है भी नहीं। वास्तव में क्यों कहा है? क्योंकि परिचय तो पूरा मिल गया ना, ज्ञान युक्त परिचय मिल गया तो गुप्त वेश रहा। देखो चित्रों में तो दिखलाते हैं, शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है, कौन से चित्र में दिखलाया है? त्रुटि के चित्र में दिखलाया। कौन है शिव बाबा? त्रिमूर्ति के चित्र में कौन शिव बाबा है, कौन ब्रह्मा बाबा है? शंकर, शंकर को तो मुरली में ताऊ कहा है, शिव बाबा तो नहीं कहा है। शिव बाबा किसे कहे? शंकर सूक्ष्म वतनवासी होता है या साकार वतनवासी होता है? शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी होता है, उसको बाबा कहें, ग्रैंड फादर कहें। तो बोला शिव बाबा भी है, ब्रह्मा भी है, चित्र में दिखलाते हैं। कौन है शिव बाबा है? अरे है तीसरा नेत्रधारी शिव बाबा है, जो त्रिमूर्ति के चित्र बाबा ने बनवाया साक्षात्कार से, उसमें तीसरा नेत्र दिखाया क्या? दिखाया वहां तो दिखाया नहीं। ब्रह्मा का चित्र तो है, फिर शिव बाबा का चित्र नहीं है, है? निराकारी चित्र है, गीता में तो लिखा है, ये सारा संसार अव्यक्त मूर्ति के द्वारा व्याप्त है। मूर्ति तो है लेकिन अव्यक्त है, और त्रिमूर्ति के चित्र में भी तीन मूर्तियों के ऊपर मूर्ति का बड़ा रूप रखा है या नहीं रखा है, जिसमें बीच में बिंदु दिखाया है या नहीं? तो बड़ा रूप साकार नहीं है, साकार है तो मूर्ति नहीं है। और वो मूर्ति शिव के मंदिरों में नहीं रखी हुई है, है? लेकिन अव्यक्त मूर्ति है। माना अव्यक्त क्यों कहा? वो लिंग मूर्ति आंखों से तो दिखाई देती है, लेकिन अव्यक्त मूर्ति इसलिए कहा उसको नाक आंख कान हाथ पांव नहीं है। क्यों नहीं है? ये दिखाने के लिए कि ये साकार तो है, लेकिन साकार होते हुए भी बुद्धि से इंद्रियों को याद नहीं करता है, इंद्रियों के भोग अनुभव नहीं करता है। इसलिए मूर्ति तो है, लेकिन कैसी मूर्ति? अव्यक्त निराकार मूर्ति है। गायन है, कहाँ गायन है? अरे शास्त्र में ही गायन होता है ना, तो कौन से शास्त्र में गायन है? गीता में ही गायन है। किन शब्दों में? अव्यक्त मूर्तिना। क्या गायन है? अव्यक्त मूर्ति के द्वारा शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, है? कौन से ब्रह्मा के द्वारा? ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, जैसा काम वैसा नाम। तो कौन से ब्रह्मा की बात उठाएंगे, है? प्रजापिता ब्रह्मा की बात उठाएंगे, वो तो प्रजापिता है। पिता है या माता है? हैं? पिता पुरुष को कहा जाता है या स्त्री को कहा जाता है? यहाँ तो ब्रह्मा की बात है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ये भी गायन है। वो भी गायन है अव्यक्त मूर्तिना लिंग रूप, और ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण सृष्टि रचते हैं, ये भी गायन है। और जरूर मनुष्य सृष्टि रचेंगे, ब्रह्मा क्या है? मनुष्य है या नहीं है? मनुष्य विकारी को कहा जाता है, निर्विकारी को देवता कहा जाता है। तो जो मनुष्य शक्ति रचेंगे किसके द्वारा है? ब्रह्मा विकारी या निर्विकारी है? ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाले को क्या कहे? विकारी कहे। जरूर मनुष्य शक्ति रचेंगे तो ब्रह्मा की औलाद क्या कहे जावेंगे? ब्राह्मण ही रचेंगे। तो देखो, तुम ब्राह्मण बच्चे बैठे हो किस रूप में, है? तुम बच्चे जो बैठे हो क्या रूप बताया? प्रैक्टिकल में ब्रह्मा मुख की औलाद हो या नहीं हो, है? ब्रह्मा के मुख से सुन करके अपन को निश्चय बुद्धि बनाकर बैठे हो कि हम ब्राह्मण हैं, सृष्टि के आदिकाल के ब्राह्मण, ब्राह्मण चोटी जिन्हें कहा जाता है। तो तुम बच्चे जो बैठे हो वो समझते हो कि मीठा मीठा बाबा हमारा बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये भी कहेंगे। कौन? ये भी कहेंगे किसके लिए बोला? ये भी कहेंगे कि मीठे मीठे बच्चे पढ़ते हैं। कौन है? ब्रह्मा बाबा सिर्फ।
अरे ब्रह्मा बाबा नहीं तो प्रजापिता ब्राह्मण,
और भी यहां लगा हुआ है। ये एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। और कहेंगे ये गे और कहेगा, यहां एक वचन है या बहुवचन है? तो ये कह करके किसकी तरफ इशारा किया? ये कहेंगे, कहेंगे अभी नहीं, क्या बोला? ये भी कहेंगे, ये मतलब भविष्य की तरफ बताया ना। और जो कहेंगे वो एक हैं या दो आत्माएं? कौन कौन? दादा लिखराज ब्रह्मा और प्रजापिता। तो ये भी कहेंगे कि मीठे मीठे बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने वाले कैसे होंगे? मीठे मीठे बच्चे शिव बाबा से पढ़ते हैं। तो इसको ही कहा जाता है रूहानी शिक्षा। अब ये अंग्रेजी में कहा जाता है रूहानी माना स्पिरिचुअल। अभी और कभी भी कोई भी स्पिरिचुअल बाप पढ़ाते ही नहीं है। रूहानी स्टेज में रहने वाला और दुनिया का कोई भी टीचर होता है क्या? होता है या नहीं होता है? नहीं होता। वो तो जिस्मानी स्टेज में होते हैं। कोई किसको? और यहाँ तो बहुत ही ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज बताते हैं, ये करते हैं हम, वो करते हैं। तो वो स्पिरिचुअल का अर्थ समझते नहीं है। स्पिरिचुअल का अर्थ ही है रूहानी। अब ये रूहानी नॉलेज तो रूहानी बाप ही बतावे कि जिस्म को पैदा करने वाला बाप बतावे है, रूहानी बाप ही बतावे। जो रूहानी बाप आकर के बच्चों को रूह की नॉलेज दे करके बताते हैं कि तुम कौन हो, है तुम रूह हो, ये नॉलेज है सिवाय रूहानी बाप के और कोई जिस्मानी मनुष्य तो देता ही नहीं। तो जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो टीचर्स जो है दुनियावी मनुष्य है वो भी इसको ही कह देते हैं कि हम स्पिरिचुअल नॉलेज देते हैं। ये जो ज्ञान मिलता है ना शास्त्रों वगैरह का, बस इस शास्त्र के ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कह देते हैं। कौन से ज्ञान को? शास्त्रों के ज्ञान को स्पिरिचुअल नॉलेज कह देते हैं। मनुष्य जो बोलते हैं वास्तव में उसको स्पिरिचुअल कह ही नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि पढ़ाने वाले जिस्मानी टीचर्स होते हैं
वो स्पिरिट अर्थात आत्मा की नॉलेज कैसे दे सकते हैं? स्पिरिचुअल माना ही आध्यात्मिक, अभिमानी अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर, आत्मा की अंदर की बात जिस्मानी मनुष्य गुरु पढ़ावेगा वो तो नहीं बता सकता। आत्मा के अंदर की बात तो परमपिता परमात्मा जो आत्माओं का बाप है वो ही बता सकते हैं, क्योंकि आत्माओं का बाप ही एक है जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है, और मनुष्य आत्मा है त्रिकालदर्शी है, वो तो जन्म मरण के चक्र में आती है, वो तो त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकती। मृत्यु होती है तो पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती है, तो क्योंकि स्पिरिचुअल कहा जाता है सिर्फ फादर को। स्पिरिचुअल फादर को रूह को कहा जाता है, तो यहां मीठे मीठे बच्चे बैठे हैं, क्लास में बैठते हैं तो अंदर में आता है बाबा आ जावे, ये इस तरह का संकल्प अंदर अंदर जो कहते हैं वो कौन कहते हैं कि बाबा आ जावे? जिस्मानी बच्चे कहते हैं जो अपन को जिस्म समझते हैं, या रूहानी बच्चे कहते हैं? रूहानी बच्चे कहते हैं बाबा आवे। तो आत्माएं बैठ करके कहती हैं बाबा आवे, और आत्माएं पुकारती हैं कि बाबा आवे। आ करके क्या करें? आ करके क्या करें? कोई ज्ञान देने के लिए बुलाते हैं? दुनिया में भी जो बुलाते भक्त लोग इसलिए बुलाते हैं कि हे भगवान आओ हमको ज्ञान दो, इसलिए बुलाते हैं हे भगवान आओ हम मूत पलिति बन गए, हमको पावन देवता बनाओ। तो आ करके जो हम पतित आत्माएं बन गई हैं, कैसी बन गई? पतित बन गई हैं, कौन सी इंद्रियों से? श्रेष्ठ इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से पतित बन गई, या दृष्ट इंद्रियों से पतित बन गई है? कैसे पतित बन गई? दृष्ट इंद्रियों से जो पतित बन गई, क्या कहते हैं? आ करके हमको पावन बनाओ, हमारी सुख तो देवता भी भोगते हैं, नहीं भोगते, लेकिन हमारी आदत ऐसी पड़ गई है कि हम भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगने के आदि हो गए, और हमको वो ज्ञान इंद्रियों का सुख भूल ही गया, वो सुख हमको जैसे सुख भासता ही नहीं, ऐसी पतित आत्माएं बन गई। कहा जाता है ना पतित आत्मा पुण्य आत्मा, किस आधार पर कहते हैं? है पतित इंद्रियों से कर्म करे तो पतित आत्मा, और ज्ञान इंद्रिया जिन्हें श्रेष्ठ इंद्रिय कहा जाता है तो श्रेष्ठ आत्मा। तो जब पतित आत्मा है तो उस समय पुण्य आत्मा होती ही नहीं, किस समय? कौन से युग में? द्वापर और कलयुग में जब पतित आत्मा है तो वहाँ पुण्य आत्मा कोई देवता कोई होता ही नहीं। जब पुण्य आत्माएं हैं कहाँ सत्युग त्रेता में, तो वहाँ कोई पतित आत्मा होती ही नहीं। और यहाँ सभी पुकारते हैं क्या, हे पतित पावन आओ। तो क्या है, पतित है या पावन है, पतित है। तो अभी ये जो बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको यहाँ बैठ करके क्या कर रहे हैं, है पावन बनाए रहे हैं। पावन बनाने के लिए ज्ञान इंद्रियों में सबते श्रेष्ठ से श्रेष्ठ इंद्रिय कौन सी है, है आंखें हैं। तो बाबा के सामने जब हम बच्चे आकर के बैठते हैं तो कौन सी इंद्रियों का संग का रंग लेते हैं, है इंद्रियों का संग का रंग लेते हैं। तो बाबा हमको ये युक्ति बताते हैं क्या क्या, दृष्ट इंद्रियों के संग के रंग से क्या बन गए, पतित बन गए। तो क्या करना है, शेष इंद्रियों के संग के रंग से पावन बनना है। तो क्या अनेकों की शेष इंद्रियों के संग के रंग से पावन बनेंगे, है अनेकों की इंद्रियों के संग के रंग से पावन नहीं बन सकते। और जो बेसिक ज्ञान लेने वाले हैं ईश्वरीय ज्ञान तो लेते हैं लेकिन निचली कक्षा का ज्ञान ले रहे हैं, उनकी बुद्धि में क्या है, है? अनेकों के ज्ञान इंद्रियों से खास दृष्टि का संग का रंग लेने से हम पावन बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, वो क्या समझते हैं बच्चा बुद्धि स्टूडेंट, है वो समझते हैं हम पावन बन सकते हैं। और तुम क्या समझते हो, है अनेकों के संग के रंग से हम पावन नहीं बन सकते, कैसे बन सकते हैं, एक के संग के रंग, एक कौन एक्स वाई जेड कोई भी एक है नहीं, जिसको हम ऊंचते ऊंच समझते हैं, ऊंचते ऊंच के रूप में हम निश्चय बुद्धि बने हैं, उसके द्वारा हम पतित से पावन बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको ये युक्ति बताए रहे हैं, क्या युक्ति, कि जो विधर्मी धर्म पिताएं हैं विदेशी हैं विविचारी हैं विविचार को बढ़ावा देने वाले हैं भ्रष्ट इंद्रियों के सुखों को बढ़ावा देने वाले हैं, उनके संग के रंग में आने से हम भारतवासी क्या बन गए, हैं पतित बन गए। अब क्या करें, हैं अब पावन बनने के लिए क्या करें, हैं हम भारतवासी तो पहले देवताएं थे अभी तो हम पतित मनुष्य बन पड़े। तो पतित से पावन देवता कैसे बने, उल्टी सीढ़ी चढ़नी पड़े या नहीं पर चढ़नी पड़े। तो उल्टी सीढ़ी चढ़ने की युक्ति बताई, क्या करना पड़े, पहले उसे एक को समझना पड़े, जिस एक के संग के रंग से हम पतित से पावन बने। किस एक को समझना पड़े, एक ज्योतिबिंदु शिव बाप को है, एक ज्योतिबिंदु को समझने से हम पावन बनेंगे या नहीं बनेंगे? अरे एक की ही तो बात हो रही है। तो एक को हमने जान लिया कि एक ज्योतिबिंदु है आत्मा, जिसको हमने समझ लिया कि वो आत्माओं का बाप है, तो उसके संग के रंग से हम पावन नहीं बनेंगे? हाँ बनेंगे, ब्रह्मा कुमारी अब यही कहती है, वो नहीं कहती है कि एक बिंदु के संग के रंग से हम पावन बनेंगे? कहती है या नहीं कहती? तो बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे है? सवाल ये है, बिंदु 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 500-700 करोड़ बिंदु ज्योति बिंदु मनुष्य आत्मा है, और पशु पक्षी पतंगे कीटाणु आदि ढेर के ढेर सारे ही ज्योति बिंदु, पता कैसे चलेगा कि इनमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं का परम पिता, जिसका कोई पिता नहीं है, वो कौन सा है? कैसे पता चलेगा है? क्या पहचान? ज्ञान पहचान तो लिया, हम आत्मा हैं, तुम हो आत्मा, हम आत्मा भाई भाई, हमारा बाप ज्योति बिंदु परमात्मा
साकार आए हुए।
जब तक मीडिया ना हो तब तक हम उसका संग का रंग नहीं ले सकते, और जो भी विधर्मी धर्म पिताएं हैं, विदेशी हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, वो निराकार को मानते हैं या साकार को मानते हैं? हैं? सिर्फ निराकार ज्योतिबिंदु को पहचान लिया तो पावन देवता बन गए हैं? कि पति दुनिया में ही आकर के जन्म लेते हैं है? और हमको क्या बनना है? हमको तो पावन देवता बनना है, हमारी तो तुष्टि नहीं होती। कहे से है दृष्ट इंद्रियों के सुख से हमारी पूर्ति, हमारी तुष्टि कोई जीवन में हुई नहीं, अभी भी नहीं है। तो हम क्या चाहते हैं? हमको पूर्व जन्मों की स्मृति आएगी या नहीं आएगी? हमको पूर्व जन्म की स्मृति आती है कि हम पहले देवता थे और अभी हम संग के रंग से पतित बन गए, अब हमें पावन बनना है। तो उन विधर्मी धर्म पिताओं ने, उनके फॉलोअर्स ने तो निराकार को ही समझा। किसको समझा? सिर्फ निराकार की बेसिक नॉलेज ली, एडवांस की गहरी नॉलेज के ऊपर उनको विश्वास नहीं हुआ। क्या गहरी नॉलेज? कि निराकार का संग का रंग लगता नहीं, और निराकार ही अगर हमारा बाप है तो निराकार से निराकारी वर्षा मिलेगा या साकारी वर्षा मिलेगा? निराकारी वर्षा क्या होता है? निराकारी वर्षा क्या? तो बस ज्ञान मिल जाए उससे पूर्ति हो जाएगी। क्यों? है ज्ञान भी ऐसा हो कि सहज ज्ञान हो, सहज याद हो। क्या निराकार बिंदु को याद करना सहज है या निराकार जिस साकार मुकर्रर रथ में आकर के नई सृष्टि रचने का सारा कार्यकर्ता कराता है, उसको याद करने से हमको प्राप्ति होगी। इस सारी सृष्टि को नई सृष्टि बनाना, पांच तत्वों वाली नई सृष्टि बनाना, पांच तत्वों का अच्छे से अच्छा उदाहरण है मनुष्य का शरीर, देवताओं का शरीर। तो उस शरीर के द्वारा हम सुख भोगे हैं, लेकिन दुख न भोगे। ऐसी सृष्टि का हमने अनुभव किया है और उन धर्म पिताओं ने सिर्फ दुखी दुनिया का ही अनुभव लिया है, या साथ साथ अति सुख आत्यंतिक सुख का अनुभव लिया है? है नहीं लिया? तो बाबा हमको युक्ति बता रहे हैं कि तुम मनुष्य से देवता कैसे बन सकते हो, कैसे बन सकते हो कि निराकार कैसे साकार में आकर नई सृष्टि रचता है, कैसे पुरानी सृष्टि का विनाश करता है और कैसे नई सृष्टि की पालना कराता है। ये गहराई को हम समझें, नहीं तो दूसरे धर्म पिता और उनके फॉलोअर्स तो कह देते हैं अल्लाह मियाँ ने जमीन बनाई, अल्लाह मियाँ ने आसमान बनाया, अल्लाह मियाँ ने चांद बनाया, अल्लाह मियाँ ने समंदर बनाया। अरे बनाया तो कैसे बनाया वो बता देंगे? बताते हैं? नहीं बताते। कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। अरे फरमाया तो क्या, आसमान से आवाज आई? आसमान से आवाज आती है क्या अल्लाह मियाँ की? है नहीं, आवाज तो कोई आती नहीं, उसको तो कान ही नहीं है, उसको नाक कान है नहीं है, उसके लिए तो भारतवासी जानते हैं कि बिनु पद चलाए सुनाए बिनु पाना, कर बिनु कर्म कराए विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। अब कैसे, सो तो बहुत से भारतवासी भी नहीं जानते हैं। रामायण की ये चौपाइयां बोलने वाले, अर्थ बताने वाले जो पंडित हैं, बड़े बड़े महात्माएं हैं, वो भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो ना, है बिना वाणी के वो कैसे बड़ा भारी वक्ता बनता है दुनिया का। जो निराकार आत्माओं का बिंदु रूप निराकार बाप है, उसको मुख तो होता ही नहीं, कैसे बनता है? है? अरे हाँ, कोई साकार में प्रवेश करके दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता बनता है। तो उस दुनिया के सबसे बड़े वक्ता को पहचान करके, जिसमें वो शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप प्रवेश करके सारा कार्य करते हैं, सृष्टि के निर्माण का, सृष्टि के बिना पुरानी सृष्टि के विनाश का और नई सृष्टि की पालना का कार्य करते हैं, उस स्वरूप को पहचाने और पहचान करके दूसरों को भी उसका परिचय दे। वो परिचय देने के लिए बाप की डायरेक्ट वाणी सुनाए, एक्यूरेट वाणी सुनाए। कैसी वाणी सुनाए? एक्यूरेट वाणी। टेप रिकॉर्डर ही सुना सकते हैं। वीडियो सुनाई सकता है, वीसीडी सुनाई सकती है। तो जो डायरेक्ट वाणी सुनाने वाला यंत्र है उससे गहराई से समझेंगे, या मनुष्य गुरु जो अपनी बात मिक्स करके सुनाते हैं उससे समझेंगे? है डायरेक्ट वाणी जो सुनेंगे उनकी बुद्धि में जल्दी बैठेगा। तो बाबा ये हमको युक्ति बताते हैं, और बड़ी सिंपल युक्ति है, याद करो। किसको याद करो? पतित पावन को याद करो। कैसे याद करें? बिंदु को याद करें। है बिंदु को याद करने से पतित से पावन बन जाएंगे। है हमारी बुद्धि रूपी आत्मा खुल जाएगी। वो बीके वाले तो बिंदु को ही याद करते हैं, उनकी आत्मा खुल गई। है खुल करके जो बाबा की वाणी है, जो टैप रिकॉर्ड की वाणी है, उसके मर्म को समझ सकती है। है समझ सकती है? नहीं समझ सकती। क्यों नहीं समझ सकती? कि बाबा ने जो डायरेक्शन दिया कि सेवा करने का सबसे अच्छा साधन है क्या? टैप रिकॉर्डर। उसको काम में नहीं लाते, अपनी टिक टिक सुनाने लग पड़ते हैं। वो टिक टिक से दूसरों को समझ नहीं आता, उनकी बुद्धि में खुद ही नहीं बैठा हुआ है कि बाबा क्या समझाना चाहते हैं। बाबा तो यही बात समझाना चाहते हैं कि इस सृष्टि में जो शिव बाबा का पात्रधारी है, जो इस सच्ची पर सदा कायम है, वो कौन है? उसके सिवाय कोई है जो इस सच्ची पर सदा कायम हो? कुछ भी नहीं है। एक ही है जिसे भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है कि सच्ची का विनाश होता है, महामृत्यु होती है, तो भी उसको मृत्यु होते हुए किसी ने देखा नहीं, और उसका जन्म ही भी लेते हुए किसी ने देखा ही नहीं। उसका ना जन्म है ना मृत्यु। कौन है ऐसा देवता? है शंकर ही गाया हुआ। वो भी शंकर का संपन्न रूप का चित्र बना हुआ है या अधूरे रूप का चित्र है? है मंदिर में जिसकी विशेष पूजा होती है वो संपन्न रूप क्या है? है वो संपन्न रूप है साकार शरीर होते हुए भी साकार इंद्रियों की स्मृति नहीं रहती है। साकार इंद्रियों की स्मृति से परे चला गया, बाप समान निराकारी स्टेज में टिक गया, उसकी पूजा होती है। मंदिरों में शिव ज्योति बिंदु बाप की पूजा करते हैं, या पत्थर के लिंग की पूजा करते हैं? है क्यों? क्योंकि वो भी आखिरी जन्म में क्या बन जाता है? पत्थर बुद्धि बन जाता है। पत्थर बुद्धि बन जाता है इसलिए ये रूप बनाए गए हैं लिंग के। सात्विक पूजा जब होती थी लिंग की तो सोने के लिंग भी बनाते थे, स्वर्ण लिंग कहा जाता था। तो सामान्य स्टेज बनी भक्तों की तो रजत लिंग बनाने शुरू कर दिए चांदी के। जब रजो प्रधान स्टेज हुई तो तांबे के लिंग बनाना शुरू कर दिए। और जब तमो प्रधान स्टेज बन गई कलयुग में तो लोहे और पत्थर के लिंग बनने लगे। तो ये शूटिंग कहाँ हुई होगी? है जरूर संगम युग में ये शूटिंग होती है, रिहर्सल है यहाँ की। तो याद करो, पतित पावन को याद करो। क्या? किसको याद करो? ज्योति बिंदु को याद करो। ज्योति बिंदु को याद करें? अरे बोलते ही नहीं। ज्योति बिंदु को याद न करो, उस ज्योति बिंदु को उस मुकर्रर रथ में याद करो, उस मुकर्रर शरीरधारी पार्टधारी में याद करो जो पतितों को पावन बनाने वाला है अपनी इंद्रियों के द्वारा। वो पावन बनाने वाला है या उसमें जो प्रवेश करता है वो पावन बनाने वाला है? है जो प्रवेश करता है वो भी पावन बनाने वाला है, और प्रवेश करने वाला ये अंजाम करता है मैं तुम बच्चों को नंबर वार आप समान बनाकर जाऊंगा। तो कोई 100% बाप समान शिव ज्योति बिंदु समान निराकारी बनेगा या नहीं बनेगा? तो जो बनता है उसकी पूजा होती है, उसको कहा जाता है क्या निराकारी बन गया, तो बाप समान बन गया या नहीं बन गया? जैसे बाप कल्याणकारी है विश्व का, वैसे वो विश्व कल्याणकारी है या नहीं है? है कि अपने अपने स्टेट का कल्याणकारी है या जहाँ जन्म लेता है वहां का कल्याणकारी है? है विश्व कल्याणकारी बन जाते हैं। तो कल्याणकारी को ही शिव कहा जाता है। अब शिव के साथ एक ही नाम है इतनी बड़ी दुनिया में, किसका नाम? शंकर का नाम है। शंकर का नाम क्यों है? ब्रह्मा में भी तो प्रवेश करता है नहीं है? दादा लेखराज ब्रह्मा में प्रवेश नहीं करता? करता है। और ब्रह्मा एक का नाम है या अनेकों के नाम है? एक रूप से ब्रह्मा पूजा जाता है, वो माना जाता है, चित्र बनते हैं या पंचमुखी चतुर्मुखी ब्रह्मा भी गाया जाता है। बाप ने तो बोला है कि मैं जिस तन में भी प्रवेश करता हूँ उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ, और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है। इसका मतलब जिस नंबर का ब्रह्मा उसी नंबर का विष्णु बनता होगा। तो ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं है, पंचमुखी ब्रह्मा चतुर्मुखी ब्रह्मा प्रसिद्ध है, और विष्णु भी एक का नाम है, है? नहीं, विष्णु भी पांच आत्माएं हैं, चार आत्माएं तो चार भुजाओं के रूप में प्रत्यक्ष देखने में आती है, आती है कि नहीं? विष्णु में चार भुजाएं देखने में आती है, परंतु भुजाएं अपने आप चलती हैं या कोई चलाने वाला होता है? चलाने वाला ऊपर होता है या नीचे होता है? हैं? भुजाओं से ऊंची की स्टेज में होता है। तो वो चलाने वाली जो आत्मा है उसका नाम शास्त्रों में भी परम ब्रह्म रखा है। कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। तो जो परम ब्रह्म है, प्रजापिता ब्रह्मा जिसको कहा जाता है, जो शिव समान रूप को धारण कर लेता है, उस शिव समान साकार में निराकार को याद करने से हम पतित पावन बनेंगे या कोई और को याद करने से पति से पावन बनेंगे? हैं? दूसरे जो ब्रह्मा जो विष्णु बनने वाले हैं, जड़ भुजाओं के रूप में दिखाए जाते हैं, उनको याद करने से पति से पावन नहीं बनेंगे? हैं? बनेंगे या नहीं? नहीं बनेंगे। बनेंगे क्यों नहीं बनेंगे? वो विष्णु के रूप नहीं है। है तो, लेकिन वो जो रूप है ब्रह्मा के, वो ऐसा रूप नहीं है जो स्थापना में भी हो, विनाश में भी हो और पालना में भी हो। तीनों रूपों में एक ही रूप, जिसको कहते हैं त्रिमूर्ति हाउस। यादगार क्या बनी हुई है? ऐसा हाउस, त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। रोड तो एक ही है लेकिन नाम त्रिमूर्ति रोड रखा। क्यों? क्योंकि जरूर एक ही मूर्ति में तीनों कार्य साबित हो जाते हैं। तो बोला उसे याद करो, पतित पावन को याद करो, नहीं तो कैसे पावन बनेंगे? नहीं तो और क्या उपाय करें सिवाय याद करने के? याद कैसे आती है? रसगुल्ला खाया होगा तब याद आएगा या बिना खाए याद आएगा? हैं? खाया होगा तो याद आएगा। खाया ही नहीं, देखा ही नहीं, सूंघा ही नहीं तो याद कैसे आएगा? तो ये सूंघना, खाना, देखना ये इंद्रियों के द्वारा होता है या बिना इंद्रियों के होता है? इंद्रियों के द्वारा होता है। तो इंद्रियों के द्वारा जो रस लेंगे वो याद तो जरूर आएगा। तो युक्ति बताते हैं बाबा, हमको युक्ति बताते हैं कि कैसे याद करें। कैसे याद करें? हाँ? सीधा सीधा साकार में निराकार को याद करने लगे। कोई ने कह दिया ये है शिव बाबा, वहां आया हुआ है, भगवान आया हुआ है, और वो हमें जाके बता दे ये है, तो याद करने लगे उसे? हैं? नहीं। हाँ, ज्ञान माने समझ, बुद्धि से समझे है। ऐसे किसी की सुनी सुनाई बातों से तो भारतवासियों ने दुर्गति पाई, और हम भी सुनी सुनाई बातों के आधार पर अगर पक्का कर देंगे, निश्चय कर लेंगे, तो आज निश्चय करेंगे कल, कल निश्चय उड़ जाएगा। अपनी बुद्धि से फैसला करेंगे तो टिके रहेंगे। तो बताया गंगा जमुना में स्नान करने, तो करने और कराने वाले भक्त कहे जाते हैं। क्या? गंगा हो या यमुना हो, यमुना का ज्ञान जल कैसा होगा? काला क्यों? अरे दिल्ली में यमुना देखी है? ठहरा हुआ पानी है। गर्मियों में क्या होता है? जब बहुत गर्मी पड़ती है तो क्या हो जाता है? काला रंग हो जाता है ज्ञान जल का। कैसे काला जल हो जाता है? हैं? रुका हुआ क्यों हो जाता है? हैं? नहीं, उसमें इतना अथाह जल नवरत्न नहीं बहता है। दिल्ली में तो सात सात आठ आठ नौ नौ नाले गिर रहे हैं, गंदगी के नाले। वो विषैले नाले हैं या स्वच्छ जल के हैं? है विषैले नाले हैं। ऐसे विषैले चैतन्य नाले जब गिरते हैं नदी में तो नदी का जल कैसा हो जाएगा? है ताला पड़ जाता है। तो यमुना में स्नान भक्त कराते हैं और करते हैं, और गंगा में गंगा भी लंबे समय तक सतयुग से लेकर के कलयुग के आज तक सतोप्रधान समय में सतोप्रधान कलयुग में सात्विक रहती है, भले फिर भी अंत में क्या हो जाती है? गायन हो जाता है उसका भी, राम तेरी गंगा मैली हो जाती। आखिरी वो गंगा के किनारे बैठने वाले जो भक्तगण हैं, सन्यासी हैं, चौपड़ी मार के गंगा के किनारे बैठते हैं, उनके संग के रंग से गंगा भी मैली हो जाती है। तो उस गंगा में स्नान करने से भक्त बनेंगे, हैं? ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञानी तू आत्मा नहीं बन सकते। तो क्या करें जो पति से पावन बने? क्या करें? गंगा में, यमुना में, कोई भी नदियों में, भारत की कोई भी नदियों में स्नान करें तो भी पावन नहीं बनेंगे। विदेशी नदियों की तो बात ही छोड़ दो, उन विदेशी नदियों में तो भक्ति मार्ग में भी कोई स्नान करने नहीं जाता है। क्यों क्यों नहीं जाता? अरे वो चैतन्य नदियां जो विदेशी हैं, वो एक बार शादी करती हैं कि अनेक बार शादियां करती हैं? तो पति तो बनती हैं, वैश्या बनती हैं या नहीं बनती हैं? वैश्या बन जाती है। तो उनका जल भी कैसा होगा? उनके अंदर जो संकल्प चलेंगे वो विषैले संकल्प चलेंगे या निर्विष संकल्प चलेंगे? विषैले संकल्प चलेंगे। तो देखो, गंगा यमुना आदि नदियों में स्नान करने से भी पावन नहीं बन सकते। क्यों? कारण क्यों नहीं बन सकते? वो नदियां कोई सागर नहीं है। गायन क्या है? सागर मंथन से अमृत निकलता है या नदियों के मंथन से निकलता है? नदियों के मेले जहाँ इकट्ठे होते हैं वहाँ मेला इकट्ठा होता है या अमृत इकट्ठा होता है? तो गायन भी है और मेले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो देखो, और तो कोई उपाय समझ में नहीं आता है। समझ में आ ही नहीं सकेगा, कोई और युक्ति निकाल ही नहीं सकेंगे। सकेंगे कब के लिए बताया है? पतित से पावन बनने की युक्ति निकाल ही नहीं सकेंगे कब के लिए बताया? भविष्य के लिए या 66 की मुरली चली है उस समय के लिए? हाँ, भविष्य में कोई प्रयत्न भी करे कि ये यमुना नदी में स्नान करने से हम पावन बन जाएंगे, ये गंगा नदी है चैतन्य, इसमें स्नान करने से, इसकी वाणी सुनने से हम पावन बन जाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता। कोई युक्ति नहीं निकाल सकेंगे सिवाय एक की, पतित पावन ऊपर वाले को कहते हैं। क्या कहा? इसको कहते हैं है? परंधाम में रहने वाले को ना, हाँ? नहीं, अरे ऊपर वाला उससे ज्यादा कोई है जो 5000 वर्ष के चक्र में लगातार संगम युग के सिवाय सदा ही ऊंचे रहता है, उससे ज्यादा ऊंचा कोई है? हाँ? हाँ? तो वही एक हुआ ना, उसको याद करने से हम सत्य से पावन बनेंगे ना। हाँ? अरे बनेंगे तो, लेकिन पहचानेंगे कैसे? है इस सृष्टि पर पति से पावन बनना है या ऊपर जाकर के पति से पावन बनना है? तो इस सृष्टि पर रहते हुए हम पति से पावन कैसे बनेंगे? उसे पहचाने बगैर बन जाएंगे? इतने बिंदु बिंदु आत्माएं, उनमें से वो कौन सा पर्टिकुलर बिंदु है जिसको हम याद करें तो उसके संग के रंग से पतित से पावन बने? तो ऊपर वाला कौन हुआ? जो सर्वशक्तिवान है, सर्वशक्तियों की अथॉरिटी भी है, है ये नहीं कहा होगा क्या, ये भी नहीं कहा परमधाम में सर्वशक्तियों की अथॉरिटी था, परमधाम में सर्वशक्तियों की अथॉरिटी कहेंगे तो जो सर्वशक्तिवान है और अथॉरिटी भी है, सर्वशक्तियों की अथॉरिटी है ऊपर परमधाम में या इस सृष्टि में है? इस सृष्टि में है, सर्वशक्तिवान भी है, अथॉरिटी भी है और वो शक्ति किस चीज की है उस पतित पावन में? उस पतित पावन में कौन सी चीज है जो शक्ति है? अरे फिर भी शक्ति है, विष पीता है, है? शास्त्रों में विष पाई गाया हुआ है या अमृत पाई गाया हुआ है? अमृत पीने वाला क्या गाया हुआ है? विष पीता है, फिर पतितों को पावन बनाने वाला है, है? अरे है या नहीं है? अरे विष पीने वाली आत्मा अलग और निर्विष बनाने वाला अलग, एक में ही दो आत्माएं हैं या एक ही प्रकार की आत्माएं हैं? दो आत्माएं हैं। तो पतित से पावन करने की शक्ति है कौन सी शक्ति? पतित जो बन गए हैं उन पतितों को या जिसमें प्रवेश किया है जो पतितम कामी काटा है उसको भी पतित से क्या बनाने की शक्ति है? पावन बनाने की शक्ति है। अब ये निराकार को शक्ति है क्या कहा? ये शक्ति किसको है? हैं? निराकार को है, पतित आत्माओं को पावन बनाने की शक्ति है या नहीं? अब निराकार है किसमें? कोई साकार में मुकर रूप से है, निराकार आत्माओं को जो आत्माएं भी निराकार हैं उनको क्या करेंगे?
जो जैसा है वैसा ही बनाएगा या कुछ और बनाएगा?
डकैत है तो डकैतों को क्या बनाएगा है? जो संघ में आवेंगे उनको डकैत चोर चोर बनावेगा, भक्त भक्त बनावेगा। तो निराकार आत्माओं को क्या करेंगे?
निराकार बना देंगे या नहीं बना देंगे?
निराकार आत्माओं को निराकार बना देंगे। अरे आत्माएं निराकार नहीं होती हैं? अरे आत्माएं निराकार होती हैं या साकार होती हैं? आत्माएं तो सब निराकार ही होती हैं, फिर निराकार बनाने की क्या बात है? हैं?
हाँ निराकारी होती तो है,
लेकिन पक्की पहचान तब होती है जब साकार में जो साकार की प्रबल इंद्रिय काम इंद्रिय है, वो काम इंद्रिय उस भोग के संबंध में जब आती है तब पता चलता है कि निराकार है या साकार है, अनुभव करने की चीज है या बिना अनुभव करने की चीज है, अनुभव करने की चीज है। उस समय निराकारी स्टेज रहती है? रहती है नहीं रहती? अगर रहती होती तो देवताओं की वो इंद्रिय पूजी जाती और सभी जो देवताएं हैं एक को छोड़ करके उनकी इंद्रियां पूजी जाती हैं, काम इंद्रिय नहीं, उनकी और इंद्रियां पूजी जाती हैं, कमल नयन हस्त कमल पाद कमल पूजी जाती है, लेकिन लिंग सिर्फ एक का ही पूजा जाता है। और पूजा पूजा साकार की होती है या निराकार की होती है? है साकार की होती है, निराकार की तो पूजा होती नहीं। निराकार बाप आत्माओं का बाप तो कहते हैं न मैं पूजा करता हूं और न पूजा लेता हूं। जो पूजा करते हैं वो पूजा लेते भी हैं, तो कौन है जिसकी शिव के मंदिरों में जो सार्वभौम मंदिर है, शिव का मंदिर सारी दुनिया में उसकी पूजा दिखाई जाती है, वो साकार है या निराकार है? है तो साकार, लेकिन जब तक शिव समान निराकारी स्टेज न दिखाई जाए तब तक उसकी पूजा नहीं हो सकती। तो क्या समझाएंगे? कोई को टैप रिकॉर्डर ले जा करके बाप की वाणी सुनाएंगे तो क्या समझाएंगे? है? अरे क्या कहेंगे? कुछ कहेंगे या टैप रिकॉर्डर सुना करके तब होकर बैठ जाएंगे? कुछ पूछेंगे बताएंगे या नहीं बताएंगे? क्या पूछेंगे? बाबा आए हैं, कहाँ से आए हैं? क्या फरक्ताबाद बम्बई से आए? ज्ञान के आधार पे क्या चीज समझाएंगे? मान लो कोई ब्रह्मा कुमार आ गया उसको क्या समझाएंगे? बाप की पहचान बताएंगे, वो तो उसने जान ली, मैं आत्मा मेरा बाप शिव ज्योति बिंदु। हाँ ये समझाएंगे कि वो पर्टिकुलर मुकर्रर रथ कौन सा है? मुकर्रर माना आदि में भी मध्य में भी और अंत में भी कायम रहता है इस सृष्टि पर, वो इस सृष्टि पर सदा कायम रहता है,
क्या बल पहचानने में ना आवे तो भी वो आत्मा जो शिव बाबा का पार्टधारी है वो सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में भी इस शक्ति पर मौजूद रहता है या नहीं रहता है? रहता है, परंतु कोई उसे जानता नहीं है। वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, वो जानकारी देने के लिए ही परमपिता परमात्मा शिव ज्योति बिंदु को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। वो निराकार है, आत्माओं का पाप निराकार है। निराकार क्या देने आता है? है लड्डू पेड़ा, धन संपत्ति, मेहरबानियां, क्या देने आता है? हाँ, निराकार से निराकार ज्ञान मिलता है। वो निराकार ज्ञान ही देता है, और उस ज्ञान को जो नंबरवार धारण करते हैं वो योग में भी उतने ही तीखे जाते हैं। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान माने जानकारी, किस बात की जानकारी है? उस सच्चाई की जानकारी, उस शक्ति की जानकारी जो इस सृष्टि पर सदा सत्य है, सत्य ही था, सत्य ही है और सत्य ही रहेगा और सत्य की ही विजय होगी। झूठ तो बात खड़ा होता है, कितना भी पावरफुल हो, जितने भी विदेशी आक्रांताएं आए लाखों लाखों की सेना लेकर के, आखिरी वो भाग खड़े हुए या ठहर रहे हैं? भाग खड़े हुए क्यों? झूठ के पांव होते ही नहीं। अडिग कौन होता है? सत्य ही अडिग है। तो जो सत्य है चारों युगों में सत्य है, रंगमंच पर चारों ही सीन में सत्य है, और सत्य के आधार पर सदैव टिका रहा है, कभी उसकी हार हिस्ट्री में हुई ही नहीं है। क्या कोई युद्ध में उसकी हार हुई ही नहीं है? उस सत्य का परिचय देने के लिए परमपिता परमात्मा शिव निराकार को इस सृष्टि पर आना पड़ता है। वो सत्य का परिचय नहीं दिया और दुनिया भर की काय करते रहे, मेले किए, मलाकड़े किए, कॉन्फ्रेंस की, प्रदर्शनी की, ये किया वो किया, और जिसकी पहचान देनी है वो पहचान नहीं दे सके, तो अपना और दूसरों का कल्याण किया किया नहीं किया? तो बाप कहते हैं क्या समझाएंगे, पूछते हैं। समझने वालों को क्या कहेंगे? बच्चे ये एक बात समझाने के सिवाय, उसे एक का परिचय देने के सिवाय जिसमें मुकर्रर रूप से आत्माओं का बाप प्रवेश करता है, बच्चे और कोई युक्ति है? है, है? गंगा का परिचय देंगे, यमुना का परिचय देंगे? गंगा को तो पतित पावन ही आया हुआ है, तो उसका परिचय देने से पतित से पावन नहीं बनेंगे? नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि बोला है नदियों का कनेक्शन, नदियों का संबंध, और संबंध इंद्रियों के द्वारा जोड़े जाते हैं या बिना इंद्रियों के संबंध जोड़े जाते हैं? है, इंद्रियों के द्वारा संबंध जोड़ते हैं। तो जो चैतन्य गंगा यमुना नदियों का, उस परम पिता परमात्मा शिव जो चैतन्य में मुकर्रर रूप से इस सृष्टि पर आया हुआ है, उससे संबंध जोड़े बगैर वो नदियां पतित पावन का कार्य नहीं कर सकती और पतित पावनी के रूप में नहीं गाई जा सकती।
गंगा भी तब गाई जाती है जब उस एक से उसका कनेक्शन हो, संबंध जुटे। संबंध नहीं है तो वो नदी नहीं है, क्या है? नाला है, ढेर के ढेर नालों से उसका कनेक्शन रहता है। वो पतित पावनी कैसे हो सकती है? तो समझाने वाले को ये समझ भी चाहिए क्या कि हम टैप रिकॉर्डर तो ले लिया, दूसरों को सुनाने भी जाते हैं, तो जो बात समझानी है वो समझाए पाते हैं? है? समझ भी चाहिए बस। वो समझ बरोबर शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन मना भव, अर्थात मुझे याद करो। कौन कहता है? हैं? बाप कहते हैं मन मना भव। ब्रह्मा को बात क्या समझती है? मन मना भव का मुझे बिंदी को याद करो। अरे बिंदी कैसे कहेगी? बिंदी कहेगी? हैं? नहीं कहेगी। जैसे निराकार आत्मा साकार शरीर धारण किए बगैर कोई कार्य नहीं कर सकती, ऐसे निराकार आत्माओं का बाप निराकार शिव ज्योति बिंदु शरीर धारण किए बगैर कुछ भी मुख से नहीं कह सकता, क्योंकि उसको मुख है ही नहीं। वो कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो, मेरे मन में समा जाओ। मत माने मेरे, मना माने मन में, भव माने समझ। मेरे मन में कैसे समझे? माना जो मेरे मन के अंदर संकल्प है वही संकल्प तेरे अंदर चले, एक भी क्रॉस करने वाला संकल्प न पैदा हो। अभी क्रॉस करने वाले संकल्प पैदा होते हैं या नहीं होते हैं? है? होते हैं। ये संकल्प रूपी खून जो क्रॉस करता है वो कहां से आया? एक बात से आया है, या अनेकों धर्म पिताओं के संग का रंग लिया, उनके फॉलोअर्स का संग लिया भारतवासियों ने, दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए। कन्वर्ट होकर के उनके संकल्पों का खून लेते रहे, जन्म जन्मांतर लेते रहे, और अंतिम जन्म में भगवान बाप आते हैं तो हर धर्म से उन्हीं आत्माओं को उठाते हैं जो सृष्टि के आदि में ब्राह्मण सो देवता बनी थी। नंबर बात नौकुरी के ब्राह्मण बने थे जो अब्बल नंबर कुरी के सूर्यवंशी ब्राह्मण बने थे, वो ज्ञान सूर्य के संकल्पों को पकड़ते हैं, दिल के सितारे अपनी ज्ञान की रोशनी को, संकल्पों की रोशनी को सूर्य की रोशनी में तिरोहित कर देते हैं या नहीं कर देते हैं? है? अलग से रोशनी छोड़ते हैं? है? नहीं छोड़ते। अब जो अलग से दुनिया भर के संकल्पों का कचरा इकट्ठा करके लाते हैं, वो और संकल्पों का खून कहां से आया, क्या साबित होता है? है? कहां से आया? अरे हाँ, भारतवासी देवता धर्म की आत्माएं ही और धर्मों में कन्वर्ट होती रही है, लेकिन कच्चे ब्राह्मण सो देवता बनने वाले कन्वर्ट होते रहे हैं या पक्के सूर्यवंशी बनने वाले ब्राह्मण कन्वर्ट हुए हैं? कच्चे। और उनका परसेंटेज कितना है? 80-90% ब्राह्मण सो देवता बनने वाले और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे हैं। उनका संघ का रंग लिया है तो उनको अनेक प्रकार के त्रास करने वाले संकल्पों का खून परेशान करता है। और बाप का जो खून है वो कैसा होगा? ओ ग्रुप वाला होगा जो सबको लगेगा, या कोई को लगेगा या नहीं लगेगा? है? बाप का जो खून होगा वो सबको असर करेगा, सूर्यवंशियों को ज्यादा असर करेगा। जो और ग्रुप वाले हैं उनको रिफॉर्म होने में टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? टाइम लग जाता। तो पूछा, क्या समझाएंगे, क्या कहेंगे?
कोई और युक्ति है?
वो बरोबर शास्त्रों में लिखा हुआ है, मन मना भव मुझे याद करो तो तुम पति से पावन बन जाएंगे। वो युक्ति बताते हैं कि अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो तो क्या करो? याद करो, जो एक्स वाई जेड मिले उसी को याद करने लग पड़े। बंगाली रसगुल्ला मिले, खाने को मिले, वो भी याद करें। देसी रसगुल्ला मिले, वो भी याद करें। अनेक प्रकार को याद करें या एक को याद करें? बाबा को याद करो। जैसे माँ होती है, बच्चा विदेश चला जाता है या बच्चा नानी के घर चला जाता है तो माँ उसकी बातों को याद करती है या नहीं करती है? तो उतनी बातें याद आती कि नहीं है? याद आती है। तो यहाँ भी तुम बाबा के महावाक्यों को याद नहीं करेंगे? हैं? वो तो बच्चे हैं, दुनिया भी बच्चे, देह के बच्चे, और तुम तो रूहानी बच्चे हो। तुम जो रूहानी बच्चे हो तो तुम्हारी रूह तो मनन चिंतन मंथन वाली होगी या विपरीत मंथन वाली होगी? तुम्हारी जो बुद्धि रूपी आत्मा है उसमें तो बाप ने क्या बोला वही बातें याद आएंगी ना? है कि विधर्मियों की बातें याद आएंगी? बाप की बातें याद कर, तो याद करो। याद करते करते सतो प्रधान बन करके अपने सतो प्रधान बाप के पास सतो प्रधान निराकारी दुनिया में चले जावेंगे। कहाँ चले जावेंगे? सत्व प्रधान निराकारी दुनिया में चले जावेंगे। कहाँ है निराकारी दुनिया? कहाँ चले जावेंगे? बाप के पास। वो स्थान का धाम का कोई नाम है? परम धाम। तो कहाँ है परम धाम? है कहाँ है? सूरज चंद सितारों की दुनिया के पार। सूरज चंद सितारों की दुनिया के पार नहीं है, है? सूरज चांद सितारों की दुनिया के पार का मतलब यह है कि जो स्थूल सूर्य है उसके भी पार, वो सौर मंडल के पार। और उस सौर मंडल में जो रात में चमकने वाले सितारे हैं उनके भी पार, दिन में चकन चमकने वाले सितारे तो होते ही नहीं, उन्होंने तो अपने संकल्पों रूपी रोशनी को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया, उनकी तो बात ही नहीं। बाकी चांद, चांद के पार क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, चांद माने ज्ञान चंद्रमा कौन, उसके संकल्पों को क्रॉस करेंगे या नहीं करेंगे, उनके संकल्पों को भी क्रॉस कर जाएंगे और कहां चले जाएंगे, है बाप के पास। कैसा बाप, सत्व प्रधान या रजो प्रधान या तामसी, सत्व प्रधान। तो कहां, ऊपर या नीचे, ऊपर नहीं माने ऊपर कोई परिणाम नहीं होता है, नहीं होता, होता तो है लेकिन आत्मा निराकारी धाम में निराकारी बनने के बाद जाएगी, इस शरीर से नहीं जा सकती। इस शरीर से जो साकारी परम धाम है, जिस साकारी परम धाम को तुम बच्चे सच्ची साकारी पर उतार लेंगे, उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, उतार लेंगे, जिस साकारी परम धाम में वो ही आत्माएं पहुंच पाएंगी जो निराकारी स्टेज में टिकी हुई होंगी। क्या ये ब्राह्मणों का संगठन ऐसा निर्विकारी बन जाएगा जो कोई भी निर्विकारी आत्मा वहां पाओ क्या रख ही नहीं सकेगी, कोई भी देह अभिमान वाला होगा वो वहां जा ही नहीं सकेगा। ऐसा संगठन तुम्हारा रूहानी संगठन, रूहानी मिलिट्री बन जाएगी। यादगार भी है, मिलिट्री का कैंप जहां होता है बाहर के आदमी प्रवेश करते हैं, है? नहीं कर पाते। तो तुम निराकारी दुनिया में चले जाएंगे। देखो ये समझने और समझाने की कितनी सहज बात है, समझने की भी है और किसी को समझाने की भी है। अच्छा फिर आओ इन चित्रों पर, क्या त्रिमूर्ति का चित्र तो समझाया, उसमें किसका परिचय दिया है, एक बाप का परिचय पहले देना, किसका परिचय दिया, शिव बाप का परिचय दिया, शिव बाबा का परिचय दिया ना, तो शिव बाबा का जो परिचय दिया वो शिव बाबा संपन्न स्टेज का परिचय देना है या अधूरी स्टेज का परिचय देना है, है? किसका परिचय देना है, संपन्न स्टेज का परिचय देना। संपन्न स्टेज क्या होती है, है? अव्यक्त स्टेज को संपन्न स्टेज कहेंगे या साकारी स्टेज को संपन्न स्टेज कहेंगे। हम बच्चों को तो डायरेक्शन मिला है, क्या अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, अभी अभी आकारी बनो, एक सेकंड में निराकारी, फिर दूसरे सेकंड में साकारी। जो साकारी प्रबल इंद्रिय है वो उसे में भी टिक जाए लेकिन बाप की याद में, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए बाप को याद करना है या नहीं करना है, करना है। तो कर्म करते कर्म इंद्रियों से
निराकारी बाप को याद करना है या साकारी बाप को याद करना है? है? निराकारी बाप को याद करना है, और निराकारी बाप को साकार में आए हुए निराकार को याद करना है, या अकेले साकार को याद करना है, या अकेले निराकार को याद करना है, या अकेले आकारी को याद करना है? साकार में आए हुए निराकार को याद करना है। तुम सतोपना निराकारी दुनिया में बाप के पास चले जा देंगे, बात है कितनी सहज और समझाने की है सहज। तो अब इन चित्रों पर आओ और बतलाना चाहिए, भगवान तो एक है ना, इन चित्रों पर आओ। किन चित्रों पर आओ? त्रिमूर्ति के चित्र में ही बताया, चार चित्र दिए हुए हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, ऊंचे ऊंचे हैं, अव्यक्त मूर्ति, और नीचे वाली है साकार मूर्तियां और आकारी मूर्तियां, साकारी सो आकारी। तो बताना चाहिए इन सभी मूर्तियों में भगवान एक है, ये चार चार हैं, है? कौन? जो ऊपर वाली अव्यक्त मूर्ति जिसे कहा जाता है, मूर्ति भी है, मूर्त रूप भी है, अमूर्त नहीं है, क्या है? मूर्त माने साकार रूप भी है, देखने में आता है उसे कहते हैं मूर्त, और जो देखने में नहीं आता है उसे अमूर्त, जो देखने में आता है उसे कहते हैं व्यक्त, और जो देखने में नहीं आता है उसे कहते हैं अव्यक्त। तो भगवान एक है, ये चार चार मूर्तियां भगवान नहीं है, ऊंचे से ऊंचा भगवंत एक है। तो कौन हुआ? कौन सी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? हैं? किसकी मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे? हैं? अव्यक्त मूर्ति की तरफ इशारा करेंगे। ऐसे तो ईश्वरीय ज्ञान की बेसिक नॉलेज लेने वाले बच्चे भी जब प्रदर्शनी करते हैं तो 32 किरणों वाला निराकार का चित्र रख देते हैं पहले, क्योंकि बाप ने कहा पहले बाप का परिचय दो। तो क्या बाप का परिचय हो जाता है? है? नहीं हो जाता। क्यों नहीं हो जाता? है? क्यों नहीं हो जाता? हाँ, क्योंकि वो निराकार ज्योति बिंदु जब तक साकार में प्रवेश करके इन 32 गुणों को प्रैक्टिकल में धारण न करे, गुण और अवगुण साकार सृष्टि पर होते हैं या निराकारी दुनिया में होते हैं, है? तो जो 32 गुण दिखाए गए हैं लिंग के, वो साकारी की यादगार हैं, साकार सो निराकार की यादगार हैं, या सिर्फ निराकार की यादगार? साकार सो निराकार कंबाइंड की यादगार है। तो उसको कहा जाता है ऊंचे से ऊंचा भगवान। उस ऊंचे से ऊंचे के मंदिर भी ऊंचे स्थान पर बनाए जाते हैं या गड्ढे में बनाए जाते हैं? हैं? ऊंचे स्थान पर बनाए जाते, गांव में भी बनाएंगे तो भी ऊंचा स्थान देखेंगे, शहर में भी बनाएंगे तो भी ऊंचा स्थान देखेंगे, नहीं तो पहाड़ों पर बनाते हैं। यही देखो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है, ये ऊंचे से ऊंचा भगवंत बाबा कहते हैं, इनके ऊपर ही बड़ी समझानी है। क्या है? बड़ी समझानी किसके ऊपर है? है? क्या कहा? इनके इसके ऊपर नहीं कहा, इसके ऊपर ही बड़ी समझानी है, ऐसे कहा? क्या कहा? इनके ऊपर ही बड़ी समझानी है, माना एक के लिए बोला या अनेक हैं? अनेक हैं। अनेक कितने हैं? है? चार हैं। अव्यक्त मूर्ति लिंग की ओर इशारा करेंगे त्रिमूर्ति में, तो उसमें चार हैं। है? दो हैं। हाँ, नहीं नहीं, ब्रह्मा तो दादा जी कर ब्रह्मा भी है और परम ब्रह्म भी ब्रह्मा ही है, लेकिन इनके जब कहा है तो अनेक आत्माओं की तरफ इशारा किया या एक की तरफ इशारा किया? है? अनेक आत्माएं हैं उनकी तरफ इशारा किया। बाबा ने ये चित्र इतना बड़ा क्यों बनाया है? त्रिमूर्ति में भी शिवलिंग का चित्र इतना बड़ा क्यों? भक्ति मार्ग में भी, मंदिरों में या वैसे भी बड़े बड़े लिंग बनाते हैं या छोटा ही बना के छोड़ देते हैं? रुद्र यज्ञ रचते थे तो बड़ा लिंग बनाते थे या छोटे छोटे बनाते थे? एक बड़ा बनाते थे और बाकी सब छोटे छोटे बनाते थे। तो इस चित्र को इतना बड़ा क्यों बनाया कि झट आकर के उस चित्र पर समझा दें कि भाई ऊंचे ते ऊंचा ये भगवंत है, तीन की ओर इशारा करो, ये ऊंचे ते ऊंचे नहीं, ये ऊंचे ते ऊंचे नहीं, ये ऊंचे ते ऊंचे नहीं। इनकी जयंती भरतनाट्य पैनी जयंती, इनकी जय जयकार भरतनाट्य पैनी, इनकी प्रत्यक्षता की कोई पौड़ी की भी कीमत नहीं। इसकी प्रत्यक्षता की कीमत है जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है उसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म जब होता है, जिसकी यादगार है महाशिवरात्रि, महान माने बड़े ते बड़ी, क्या सारे कल्प में इतनी बड़ी अंधकार की रात्रि कभी न हुई है न भविष्य में कभी होगी, जैसी ये बड़ी से बड़ी महान शिवरात्रि अब होने वाली है कि हुई है? है? होने वाली है। तो जानते हो ना, ये देखो भगवंत है, ये बाबा है ना सबसे बड़ा बाबा। क्या दुनिया में जितने बाबाएं हुए हैं उन सब बाबाओं से सबसे बड़ा बाबा ये है, सब आत्माओं का बाप। अच्छा, अभी ऊंचे से ऊंचा भगवंत को हमको वो स्वर का वर्षा देना है, क्योंकि वो नई दुनिया स्थापन करने वाला है। नई दुनिया स्थापन करने वाला है या 66 में स्थापन कर दी थी? है? करने वाला है नई दुनिया स्थापन करने वाला है, तो मुरली में कब इशारा दिया कि नहीं, कब स्थापन करने वाला है? है? पढ़ाई कब पूरी होती है? है? 40 से 50 वर्ष में पढ़ाई पूरी होती है, पढ़ाई पूरी होती है 40 से 50 वर्ष में, और पढ़ाई है एक को पहचानने की कि कुछ और पढ़ाई है? पढ़ाई क्या है? एक मुकर्रर रथ को पहचानने की पढ़ाई है, और वो पढ़ाई में आज निश्चय बुद्धि कल अनिश्चय बुद्धि होता है कि नहीं? तो पढ़ाई पूरी हुई है, पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई। और सबके अंदर ऐसा होता है कुछ न कुछ, आज निश्चय बुद्धि और कल सुन सुनाई बातों से भारतवासियों ने दुर्गति पा ली, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है। तो बताया ये नई दुनिया स्थापन करने वाला ये है, उस मूर्ति की तरफ खास इशारा करो। और ये बाबा है, बाबा की भी परिभाषा क्या बताई, साकार और निराकार के मेल को बाबा कहेंगे। तो साकार ब्रह्मा बाबा दादा ले सकते, और निराकार ज्योति बिंदु, तो बाबा नहीं हुआ। क्यों है? माँ का पान, तो बाबी कहो दादी कहो, बाबा क्यों कहते हो है? नहीं वो तो शरीर छोड़ दिया ना, जो हो चुका है जो पास्ट हो गया उसको याद करना है, या जो वर्तमान प्रैक्टिकल में संगम युग में है या नहीं है उसको याद करना है। वो आया है और काम पूरा कर दिया है या नहीं कर दिया है, है? काम पूरा कर गया, काम तो चल रहा है ना। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि जो आत्मा कोई कार्य को हाथ में ले ले और अधूरा छोड़ करके भाग जाए वो श्रेष्ठ आत्मा है या निष्कष्ट आत्मा है? निष्कष्ट है। श्रेष्ठ कौन है? जो कोई कार्य का बीड़ा उठा दे और उस कार्य को पूरा ही करके छोड़े। तो दादा लेखराज का जो साकार स्वरूप है जिसमें निराकार तो भला आया लेकिन सिर्फ निराकार वाणी का वर्षा दिया कि साकार में विश्व की बात सही दे दी है, साकार में तो नहीं दे दी। साकार में किसी का प्रैक्टिकल में पार्ट प्रत्यक्ष हो गया नहीं हुआ, वो पार्ट माला के रूप में, माला रूपी संगठन के मणकों के रूप में अभी प्रत्यक्ष होने वाले हैं या हो गए, होने वाले हैं। तो वो नई दुनिया स्थापन करने वाला वो है जो शरीर छोड़ करके चला गया, वो रूप नहीं, जो स्वरूप अभी भी है और आगे भी नई दुनिया स्थापन करने तक रहेगा, वो ही बाबा है, साकार और निराकार का मिल है। अगर भला नहीं है वो तो बताओ भला क्या है? है वो अगर नहीं है तो बताओ भला क्या है, और क्या है? किसी की दृष्टि में कोई है तो बताए कि वो कौन है नई दुनिया स्थापन करने वाला। चलो ढेर की ढेर विष्णु पार्टी वाले हो वो बताए कि वो बाबा नहीं है तो बताओ कौन सा बाबा है। अगर तुम अपन को कहते हो मैं बाबा हूं तो फिर समझाओ हम, तो अधूरा ज्ञानी होगा तो उनकी बातों के चंबर में आएगा, या पूरा जिसको ज्ञान मिला होगा बाप का वो चंबे में आएगा है? अधूरा ज्ञानी होगा तो चंबे में आ जाएगा। बाबा देंगे ही ईश्वर की बात सही, क्या देंगे है? सड़क की बात सही, कौन से गा की बात सही, स्व स्व र ग, ग माने गया, स्व मानते हैं, स्व स्थिति में गए। तो स्व स्थिति में जाने वाला कोई तो एक पुरुषार्थी होगा जो पहले पहले अव्वल नंबर में स्वस्थिति में जाए, वो अपनी नई दुनिया बनाएगा या कोई दूसरा बनाएगा? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि है, कौन बनाएगा नई दुनिया? अपनी नई दुनिया कौन बनाएगा है? अपने स्वरूप को संपूर्ण रूप से पहचानने वाला बनाएगा या अपने को ही न पहचानने वाला बनाएगा? तो वो बाबा ही स्वर्ग की बादशाही देंगे जो स्वयं स्थिति में पहले पहले जाता है। और कौन सी बात चाहिए? घनेरे सुख की बात चाहिए। कैसे सुख की बात चाहिए? ये क्या होता है? त्रेता में नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो, लेकिन 16 कला संपूर्ण। सतयुग में घनेरे सुख नहीं मिलेंगे, है? मिलेंगे लेकिन 16 कलाओं में बंधे हुए मिलेंगे। कैसे सुख है? 16 कला की रोशनी में बंधे हुए सुख मिलेंगे, कलातीत सुख नहीं मिलेंगे। और हम कौन से बाप के बच्चे हैं? है, कलातीत क्या है? सूर्य के बच्चे हैं। सूर्य को कभी कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। हमारे घनेरे सुख ऐसे होंगे जो देवताओं के सुख से भी ऊंचे होंगे। कैसे? देवताओं के सुख इंद्रियों के सुख होंगे, ज्ञानेन्द्रियों के सुख होंगे या वाइब्रेशन के सुख होंगे? उनके ज्ञानेन्द्रियों तक सीमित ही सुख होंगे। और हमारे सुख घनेरे कैसे होंगे? हैं? ज्ञानेन्द्रियों से भी परे वाइब्रेशन का सुख होगा। और इंद्रियों से भी परे क्या होता है? मन। और मन से भी परे बुद्धि। तो जो हमें सुख मिलेगा वो मन रूपी बैल या ब्रह्मा या घोड़ा से मिलेगा या उसके ऊपर सवार होने वाले से मिलेगा? है, उसके ऊपर भी सवार होने वाले से मिलेगा जो दिखाते हैं। क्या क्या दिखाते हैं? बैल पर सवार शंकर हुआ और शंकर पर सवार शिव होता है। बैल के ऊपर भी शिव का गुम्मर दिखाते हैं, कंधे पर दिखाते हैं, दिखाते हैं। तो उसे शंकर क्यों नहीं कहते है? हाँ, कि बैल जो है वो समझ नहीं सकता। ज्ञान की गहराई को बैल समझेगा, जानवर नहीं समझेगा। कौन समझेगा है? मन से समझेगा। तो जो अड़ियल बैल है उसको कंट्रोल करना सबके बस की बात नहीं है। उसे कंट्रोल करना दिखाया गया है। जो मन अड़ियल है, क्या कैसा अड़ियल? गीता में क्या बोला अर्जुन को? अर्जुन ने क्या कहा? हे भगवान, ये मन बड़ा अड़ियल है, कंट्रोल में आने वाला नहीं है, इसे कैसे कंट्रोल में लाया जाए? तो बताया, बार बार अभ्यास करो। क्या अभ्यास करो है? वो अभ्यास करो जो अभ्यास करना दुनियावी मनुष्यों के लिए तो बहुत कठिन है और तुम ब्राह्मणों से देवता बनने वालों के लिए सहज है। क्या? कि जो तीव्रतर इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, उस कर्म इंद्रिय के युद्ध में तुम ऐसी बार बार स्मृति की अभ्यास करो कि 63 जन्मों के संस्कार होने के कारण उस इंद्रिय का सुख लेने के कारण आदत जो पक्की बन चुकी है, उस इंद्रिय का जन्म जन्मांतर सुख लेने की, वो सुख बाबा की याद में लेना बंद करो। बार बार बुद्धि नीचे जाएगी, बार बार बुद्धि को नीचे से पालाओ, प्रकृति के मध्य में ऊपर ले जाओ। यही बात गीता बताई, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादय, उत्तम माने ऊपर, हरे तो माने हरण करके ले जाओ। क्या जबरदस्ती करनी पड़ेगी? मन बुद्धि को ऊपर ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हैं? जबरदस्ती ऊपर ले जाने का अभ्यास करना पड़ेगा, वो फिर नीचे चली जाएगी। तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर ऊपर ले जाओ, फिर नीचे जाओ, फिर ऊपर जाओ। जैसे एक साइकिल पर सवार होने वाला बार बार गिरता है और बार बार चढ़ जाता है, तो हार हुआ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। हिम्मत हारे तो हार, और हिम्मत बचे तो मदद बाप बचाए। तो अंतिम वजह तुम बच्चों की है, हारिए न हिम्मत दिसारिये न राम। पहली बात, और ये अभ्यास पक्का कैसे होगा? अभ्यास तो कौन थे वैराग्य चग्रियते, विराग, वि माने विपरीत, राग माने प्यार। क्या? प्यार के विपरीत, और प्यार किससे किया है जन्म जन्मांतर? देहधारियों से या ज्योति बिंदु आत्मा परमात्मा से? देहधारियों से प्यार किए, तो उन देहधारियों को सबको क्या करो? हैं? हाँ, उनसे प्यार न करो। यही है फाइनल पेपर है। क्या? नष्ट मोहा स्मृति लंका। काय से नष्ट मोहा? अपनी देह से नष्ट मोहा, देह के संबंधियों से नष्ट मोहा, और देह के पदार्थों से भी नष्ट हुआ। महल बाड़ियां, अटारियां, हवाई जहाज, कोई भी मोह नहीं। नो अटैचमेंट, कोई लगाव नहीं। उसको कहेंगे अटैचमेंट ही हट जाए तो क्या कहेंगे? साक्षी दृष्टा। क्या? जैसे शरीर अलग पड़ा हुआ है और आत्मा अलग से देख रही है, ये शरीर मुर्दा पड़ा है, इससे हमारा कनेक्शन नहीं है, ऐसी वैराग वृत्ति को धारण करना है। ये पदार्थ हमारे काम नहीं आएंगे, जब महामृत्यु का टाइम आएगा ये देह भी हमारे काम नहीं आएगी, शरीर सड़ते जावेंगे। क्या कहा? शरीर सड़ते जावेंगे, तो ये देह हमारे काम आएगी? नहीं आएगी। और देह के संबंधी और चौकड़ी मार के भाग जाएंगे। जैसे द्वितीय युद्ध विश्व युद्ध के टाइम ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिन देह के संबंधियों ने उन तथाकथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों को सात सात तालों के अंदर बंद करके रखा था, महीनों महीनों, वर्षों वर्षों, जब 47 का हिंदुस्तान पाकिस्तान का खून की नदियां बहाने वाला युद्ध हुआ तो चौकड़ी मार करके भाग गए थे। काम आए? देह के संबंधी जो इतना प्यार दिखा रहे थे, वो प्यार दिखाने वाले काम आए? नहीं आए। तो बाप कहते हैं ये नई दुनिया स्थापन करने वाले बाबा को याद करो, जो स्वस्थिति में ले जाने का देवताओं की तरह, जो सदा स्वस्थिति में रहते हैं, ऐसा पुरुषार्थ कराने वाला है। गनेरे सुख की बात चाहिए देने वाला है, सतयुग से भी जो ऊंचा सुख है, सोलह कला संपूर्ण का सुख, उससे भी ऊंचा सुख देने वाला है। जिस सुख में जिन्होंने तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख दिया है, तुम्हें पता चल जाएगा कि जन्म जन्मांतर के ये दुश्मन हमारे कौन हैं, जिन्होंने हमको नीचे गिराया, बरगलाए बरगलाए, झूठी बातें सुनाई सुनाएंगे। ऐसे तो गलती हमारी ही है। क्या गलती है, क्या गलती है, है? एक से सुनना चाहिए, अनेकों से सुना तो विविचारी ज्ञान हो जाए। तो द्वापर युग से हम जानते हैं कि द्वापर युगी कलयुगी भक्ति मार्ग की दुनिया में वो एक कौन है जो सबसे जास्ती ज्ञानी माना जाता है, जिसका नाम भारत है। असल में भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो थ्योरी के हिसाब से भी ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। शास्त्र बना करके, शास्त्र सुना करके, शास्त्र का मनन चिंतन मंथन करके, गीता शास्त्र का सात्विक द्वापर युग में रचना करके क्या कहा जाता है गीता में, किसकी प्रसन्नता से हमें गीता ज्ञान मिला? व्यास प्रसादा, वो पहला शास्त्र है सत्वगुणी, और उसके बाद जितने भी शास्त्र लिखे गए, जैसे चार वेद किसने लिखे, वेद व्यास, फिर अगले जन्मों में उन वेदों की व्याख्या किसने की, पहले पहले आरण्यक निकले, शतपथ ब्राह्मण आदि निकले, उपनिषद निकले, पुराण निकले, उन पुराणों में भी जो मुख्य मुख्य पुराण हैं, कौन कौन से, महाभारत पुराण, भागवत पुराण किसने लिखे है, व्यास ने लिखे ना। और कलयुग में जिस शास्त्र का इतना नॉर्थ इंडिया में प्रचलन है, कौन सा है, रामायण, वो भी किसने लिखा पहले पहले है, व्यास ने नहीं लिखा, वाल्मीकि ने लिखा, और हमको बाबा ने बता दिया। क्या अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा लिख दी, तो वाल्मीकि रामायण में जो महिमा लिखी गई है, जिसकी महिमा लिखी गई है, वो लिखने वाला कौन है, हैं? कौन हुआ, वही एक आत्मा जो वेद व्यास कही जाती है। तो ये तो थ्योरी की बात हुई, और प्रैक्टिकल जीवन की भी बात कहो तो द्वापर से लेकर के कलयुग तक प्रैक्टिकल जीवन में जितना भी संघर्ष आया, झूठ झूठों के साथ, झूठे धर्मों के साथ, वो सत्य सनातन धर्म का पालन करने वाला एक सत्य आदि से लेकर के अंत तक प्रैक्टिकल जीवन धारण करके भी प्रैक्टिकल कर्मियों से ऐसे कर्म करता है कि कभी किसी से हार नहीं मानता, संघर्ष ही संघर्ष सारे जीवन में, और विजयी बनता है या हारता है, विजयी बनता है। और शास्त्रों में भी एक ही आत्मा है जिसका कभी भी युद्धों में हार नहीं दिखाई गई है, कौन आत्मा है, नारायण। वो नारायण अर्थ वही है, नार आयन भा रत, ज्ञान की रोशनी में लगा रहे सो भारत,
नार माने ज्ञान जल में जो घर बना के बैठा रहे वो नार ज्ञान में ही मस्त रहता है। कितना भी संघर्ष आ जाए, कितनी भी युद्ध की बड़े से बड़ी स्थिति आ जाए तो भी ज्ञान जल में मस्त रहता है। तो ऐसी स्टेज बनाने वाले को भारत कहा गया है, और वो भारत अविनाशी खंड है या विनाशी खंड है? कैसा खंड है? अविनाशी खंड है। धरणी की ही बात है या चैतन्य पुरुषार्थ की भी बात है? धरणी ज्ञान धारण करती है, रोशनी धारण करती है ज्ञान की, या चैतन्य आत्मा धारण करती है? चैतन्य आत्मा धारण करती है। तो देखो वो एक ही है, ऊंचे ते ऊंचा, जिसे इस दुनिया में ऊंचा कहा जाता है, हीरो पार्टधारी, नई दुनिया स्थापन करने वाला है और बाबा भी है। अगर वो नहीं है तो बड़ा बताओ और कौन है? जो विरोध करने वाले हैं, ढेर की ढेर विष्णु पार्टियां निकली हैं भुजाओं के रूप में। विष्णु की अनेक भुजाएं होती हैं कि नहीं होती हैं? तो जो अनेक मतों वाली निकली हैं वो बताएं कि बाबा कौन है, जिस साकार में वो निराकार प्रवेश करके अभी पार्ट बजा रहा है, वो बताओ। देखो तुम याद करते हो फिर ये सब बातें भूल जाते हो क्या? ये ज्ञान की बातें याद करते हो कि बाबा कौन है, फिर क्या होता है? फिर भूल जाते हो। इसलिए जो बाबा समझाते हैं कि कैसे आवे तो हम इनको कैसे समझावे, तो तुम लोग को बाबा समझाते हैं। क्योंकि बाबा को फीलिंग आती है, बाबा को ये फीलिंग आती है। क्या फीलिंग आती है? बाबा को, बाबा को बड़ी फीलिंग आ रही है। क्या फीलिंग आ रही है शिव बाबा को? अरे इतने साल हो गए कि मैं जो समझाना चाहता हूँ वो कोई भी बच्चे जा करके समझाते नहीं है। एक्यूरेट टैप की रिकॉर्डर की वाणी सुना करके, वीसीडी से एक्यूरेट सुना करके समझाते नहीं है जो मैं बात समझाना चाहता हूँ। क्या समझाना चाहता हूँ? हाँ, कि वो ऐसा पक्का निश्चय बुद्धि बनाओ कि वो आत्माएं एक बार निश्चय बुद्धि हो करके फिर कभी भी अनिश्चय बुद्धि न बने। ये बाबा को फीलिंग आती है। जो बाबा चाहते हैं उस युक्ति से समझाते ही नहीं है, कौन समझावेंगे? जो समझाया हुआ होगा एवरलास्टिंग। क्या एवरलास्टिंग का मतलब? एवरलास्टिंग समझा हुआ कौन? अरे एवरलास्टिंग समझा हुआ वो जो कभी भी अनिश्चय बुद्धि न हो, उसको क्या कहेंगे? एवरलास्टिंग समझा हुआ। आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि, थोड़े समय के लिए भी अनिश्चय आया तो एवरलास्टिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो उस युक्ति से समझाते नहीं है। जो फर्स्ट से समझने वाले को तीर लग जाए नहीं तो सिखलाता हूँ, रोज रोज बच्चों को बताता हूँ। अरे भाई क्या बताता हूँ, क्या बताता हूँ, अरे बाप तो एक है, क्या जन्म देने वाला बाप एक है, तुम्हारी आत्मा को जन्म देने वाला माना तुम्हारी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर अब्बल नंबर का पार्ट बजाने वाली कौन सी आत्मा है, ये परिचय कौन देगा है? ये परिचय मिले और एक दम तीर लग जावे, पक्का तीर लग जावे कि मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ, मैं और कोई वंश का नहीं हूँ, डायरेक्ट ज्ञान सूर्य का बच्चा हूँ। नहीं तो सिखलाता हूँ, रोज बताता हूँ। अरे भाई बाप एक है, देखो ऊंचे थे ऊंचा भगवान, ये ऊंचे थे और ऊंचा और नीचे थे नीचा, ये कोई दूसरी दुनिया की बात नहीं है, कहाँ की है, इस साकार सृष्टि की ही बात है। ऊंचे थे ऊंचा भगवान, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर है, इनको भगवंत तो नहीं कहेंगे क्या, इनको भगवंत कहेंगे क्यों, क्यों नहीं कहेंगे, वो ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा को गीता का भगवान नहीं मानती, कहती हैं या नहीं कहती हैं है? गीता का भगवान कहती है ना साकार में, और तुम है? तुम नहीं कहते हो। ऊंचे थे ऊंचा कौन है, तुम बताते हो कि ब्रह्मा को ओम राधे मम्मा को ड्रिल कराने वाला यज्ञ के आदि में कोई था या नहीं था, तुम प्रूफ देकर बताते हो। तो उनको भी जो डायरेक्शन देने वाले थे, ड्रिल कराने वाले थे, समझाने वाले थे, वो ऊंचे हुए या ब्रह्मा सरस्वती या उनके फॉलोअर्स ऊंचे हुए, वो ही ऊंचे हुए। तो ये ब्रह्मा विष्णु शंकर इनको भगवान नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे फिर, देवता कहेंगे। अब समझा, ये ठहरा वो भगवान, क्या कहा है, ये ठहरा वो भगवान, तो ये कह करके किस तरह से इशारा किया है? अरे वही जो चार मूर्तियां रखी हुई है, ऊपर लिंग मूर्ति अव्यक्त मूर्ति और नीचे साकार मूर्तियां रखी हुई है या आकारी मूर्तियां रखी हुई है, उनकी तरफ इशारा किया और उनमें से सर्वोपरि मूर्ति के तरफ इशारा किया, ये ठहरा वो भगवान, वो एक ही है, ऊंचे थे ऊंचा भगवान। भगवान उनको कहेंगे, उनको कह के दूर क्यों बतिया है, शिव की आत्मा तो दादा लेखराज ब्रह्मा में ही बोल रही थी, तो उनको कह के दूर क्यों कर दिया है? आगे भविष्य में कोई बजने वाला पार्ट है मुकर्रर सभी के द्वारा। इतनी सहज बाबा बातें बताते हैं और वो बातें भी भूल जाते हैं। जिस समय बताने लग पड़ते हैं चक्कर में, उस समय भी ये युक्तियां भूल जाते हैं। क्या सच्ची चक्कर में भी जब समझाते हैं तो समझाते समय जो बताना है बाबा की युक्ति वो भूल जाते हैं। तो जो पुरानी शिक्षा है इनकी चली जाती है वो याद पड़ जाती है। पुरानी शिक्षा क्या है? क्या पुरानी शिक्षा? अरे बीके वालों ने क्या शिक्षा पढ़ाई? निराकार बिंदु को भगवान माना, जाना और दूसरों को समझाया कि कुछ और समझाया है? तो वही पुरानी शिक्षा इनकी चली आती है। इनकी माने किनकी? इनकी है? उनकी नहीं कहा, इनकी वही शिक्षा जो चली आती है पुरानी वो ही याद पड़ती है। क्या करते हैं जो ये बात उनको बुद्धि में नहीं बैठा सकते हैं, ये बात जो बाबा आज बताते हैं, क्या बताते हैं कि ऊंचे से ऊंचा भगवान प्रैक्टिकल शरीर में पार्ट बजाने वाला इस शक्ति पर कौन है, उसका एवरलास्टिंग परिचय देना है। ये बात बुद्धि में बैठा ही नहीं सकते। अब देखो, हम ब्रह्मा के बच्चे ठहरे, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है। किन से? ए? हमको वर्षा इनसे नहीं मिलता है, वर्षा तो बाप से ही मिलेगा। इनसे नहीं मिलता है का मतलब है, ये जो ब्रह्मा नामधारी हैं, टेम्परेरी शरीरधारी, उनसे वर्षा नहीं मिलता है। किससे मिलता है वर्षा? तो एक बाप से ही मिलेगा। भविष्य में मिलेगा या अभी मिल गया है? और तथाकथित ब्रह्मा कुमारियां क्या समझती हैं? हमको वर्षा मिल गया मेलमानियों अटारियों का कि नहीं मिल गया है? वो समझती हमें मिल गया। अरे बाप तो बेहद का वही है। क्या बेहद का बाप? वही है। अच्छा वर्षा ये सामने है, ये हमारा वर्षा सामने है, अब ये वर्षा हम ले रहे हैं, सामने है। अरे वर्षा सन्मुख है, वर्षा सन्मुख है। जो कहते हैं वर्षे को याद करो, बाप को याद करो, घर को याद करो, अरे कभी कहते हैं एक को याद करो, कभी कहते हैं तीन तीन को याद करो, क्या करें हैं? हाँ, इनसे जब कहा तो साबित होता है कि वो हमारा सुख देने वाला सुखदाई बाप स्वर्ग है, जो हमको स्वस्थिति में स्थित कराने वाला है। सिर्फ हमको ही नहीं, झाड़ के चित्र में दिखाया है कि ऊपर बैठा हुआ सारी दुनिया की मनुष्य आत्माओं को आत्मिक रूप में स्थिर करा के ऊपर ले जा रहा है या शरीर के साथ ले जा रहा है, हैं? सारी दुनिया की मनुष्य आत्माएं उस एक बाप को पहचानेंगी जो मनुष्य सृष्टि का बाप है। और भक्ति मार्ग में भी मानती तो है, आदम आदम एडम आदिदेव आदिनाथ के रूप में मानती है ना, लेकिन जानती भी है? जानती नहीं। अभी तुम जानते भी हो कि इनसे वर्षा नहीं मिलता है, इनसे माना जो भी और ब्रह्मा नामधारी हैं, उनसे वर्षा नहीं मिलता है। ये तो टेम्परेरी शरीर है, वर्षा किससे मिलता है? मुकर्रर रथधारी बाप से वर्षा मिलता है। वर्षा तो बाप से ही मिलेगा ना, बाप तो बेहद का कोई है, फिर इनसे की जगह वही हो गया। यह नहीं है, वो ही है, दूर कर दिया या नजदीक के बाजू में दूर कर दिया। अच्छा, वर्षा ये सामने है हमारा, है सामने है, है सामने है। सामने आने से खुशी होती है क्या? स्वर्ग की स्वर्गीय खुशी होती है यार, अंदर अंदर मुख मेहराम बगल में छुरी होती है, क्या होता है? हैं? खुशी होती है। अगर छुरी होती है तो हा? तो विपरीत संकल्प है या मनमना भव है? विपरीत संकल्प है, और विपरीत संकल्प है तो इससे क्या साबित है कि सन्मुख है या विमुख है? तो विमुख हो गया। यहाँ तो सामने की बात है, वर्षा ये सामने है, ये अभी वर्षा हम ले रहे हैं, कब ले रहे हैं? कब ले रहे हैं? जब सारी दुनिया की मौत सामने है। क्या कहा है? अभी कहते हैं वर्षा सामने है, अभी कहते हैं मौत सामने है, ये क्या चक्कर है? अरे वो महाकाल भी है, क्या कहते हैं उसे? महाकाल। महाकाल का माने महामृत्यु, वो भी सामने है, लेकिन हमारे लिए बेहद की मृत्यु है या हद की मृत्यु है? है हमारे लिए मृत्यु भी बेहद की है। बेहद की माने हाँ, हमारी बेहद की मृत्यु का मतलब है कि हाँ, हम कभी भी अनिश्चय बुद्धि नहीं बनेंगे। अनिश्चय बुद्धि माने मृत्यु, और निश्चय बुद्धि माने जन्म। तो हम बाप से एवरलास्टिंग अमरता का वर्षा ले चुके या लेना है? हा? लेना है या ले चुके? लेना है, माने अभी अनिश्चय आ रहा है, अभी जन्म मृत्यु का चक्कर चल रहा है। तो मौत है सामने, लेना है तो अभी लेना है, नहीं तो नहीं लेंगे तो क्या होगा? अरे वर्षा नहीं लेंगे तो क्या होगा? मौत सामने है, मौत हो जाएगा। अगर मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन गए, तो कुछ भी मिलेगा? मिलेगा नहीं। अभी क्या मिलने की संभावना है? अरे अभी हम पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजयोग की पढ़ाई किस लिए पढ़ रहे हैं? राजा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। और अभी ये राजाई का पढ़ाई पढ़ करके वर्षा नहीं ले सके और मौत हो गई, अनिश्चय बुद्धि बन करके भाग गए, तो क्या होगा? कुछ मिलेगा? अरे कुछ राजाई वाजाई मिल जाएगी कि नहीं? है? नहीं मिलेगी। क्यों? अरे राजा नहीं बनेंगे, रानी बन जाएंगे, वो भी नहीं बनेंगे। हैं? दासा जी बनेंगे तो हैं? अच्छा, जो दास दासी बनेंगे, जैसे राम सीता हैं, राधा कृष्ण के फर्स्ट क्लास दास दासी बनते हैं, बनते हैं या नहीं? माँ बाप के रूप में बनते हैं ना, तो अच्छी बात है, खराब बात है? अच्छी बात है। तो अगर भाग गए तो कुछ भी वर्षा नहीं मिलेगी। क्या राधा कृष्ण जैसे जो सतयुग में जन्म लेने वाले बच्चे हैं, उनके माँ बाप के दास दासी भी, उनके माँ बाप को जन्म देने वाले बेहद के दास दासी भी नहीं बन सकेंगे, कुछ भी वर्षा नहीं मिली। माना राज परिवार में महामंत्री सेनापति वगैरह कुछ होते हैं कि नहीं, जन्म जन्मांतर है वो भी नहीं बन पाएंगे। बड़े बड़े अधिकारी होते हैं राज्य में, अधिकारी होते हैं कि नहीं, कि एक राजा ही सब कुछ चलाता है, है? सहयोगी होते हैं कि नहीं, वो भी नहीं बन पाएंगे, रानी भी नहीं बन पाएंगे, बच्चों को जन्म देने वाले दास दासी भी नहीं बन पाएंगे और राज्य के अधिकारी भी नहीं बन पाएंगे और जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों के घरों में दास दासी भी नहीं बन पाएंगे। कब नहीं बन पाएंगे? अगर जो सामने वाली मौत सामने खड़ी है उसने हार खा के मौत स्वीकार कर लेंगे, माने अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे, तो पीछे जब भी जन्म होगा क्या कहा, यहां से भाग गए अनिश्चय बुद्धि बन गए, बाद में जब भी तुम्हारा जन्म होगा, अरे सत्यवतीता द्वापर कलयुग में कभी जन्म होगा या नहीं होगा, जब भी तुम्हारा जन्म होगा तभी तुम्हारा रावण के राज्य में होगा। क्या? राम के राज्य में जन्म होगा ही नहीं। जन्म और मौत अभी दोनों सामने खड़े हैं, वर्ण कर लो, जन्म चाहिए या मौत चाहिए? आप एक चाहिए या देर दराज में मिले तो भी चलेगा? जन्म चाहिए तो जल्दी जन्म चाहिए या सबसे लास्ट में चाहिए? है? अगर सबसे लास्ट में चाहिए तो 16,000 के लास्ट में जन्म आएगा, नंबर मिलेगा, या तो 4.5 लाख के बाद वाला नंबर मिलेगा, या तो 9 लाख का जो अंतिम मड़का है वो अंत वाला जन्म मिलेगा। तो क्विक चाहिए या लेजी चाहिए? क्विक चाहिए, ऐसा ना हो कि टू लेट हो जावे। क्या एक बारी तो टू लेट का बोर्ड लग गया, कब के लिए बोला था? है? कब के लिए बोला था पहला टू लेट का बोर्ड? है? 76 के लिए बोला था। अभी 8 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर क्या होगा? फिर 108 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर क्या होगा? ब्रह्मा की 1000 भुजाओं को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। फिर 16,000 को छोड़ करके बाकी सब के लिए टू लेट का बोर्ड लगेगा। राज परिवार से बिल्कुल निष्कासित, जन्म जन्मांतर राज परिवार में आएंगे ही नहीं, प्रजा वर्ग में ही जन्म लेते रहे, तो क्या होगा? है? अरे प्रजा वर्ग में भी तो नंबर है, फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास प्रजा, वो भी नंबर लगेंगे या नहीं लगेंगे? लगेंगे। तो बोला टू लेट होता जाएगा, कितना सहज समझाते हैं। तो बच्चों को फीलिंग होनी चाहिए ना, क्या कि हम जितना बाप का परिचय देंगे एक्यूरेट उतना हमारा ऊंचा राजपद बनेगा, इस बात की फीलिंग आती है कि हमने एक्यूरेट बाप का परिचय कितनों को दिया? एक्यूरेट दिया या इनएक्यूरेट दिया? आज समझा और कल भाग गए, तो इनएक्यूरेट परिचय हुआ या एक्यूरेट परिचय हुआ? फीलिंग आनी चाहिए। हम ऐसे तो नहीं समझाते हैं ऐसे कि आज बच्चा जन्म ले, निश्चय बुद्धि बने और कल मर जावे। हम तो ये करते हैं, हम वो करते हैं, फलाना ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, मना ये बातें बोलते हैं ना। आज हमने ऐसे समझाया, वो समझाया, वो तो ऐसा समझाता है, उस तरह समझाता है, हम ऐसे समझाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, जो ये क्यों नहीं समझा सकते हैं, क्या नहीं समझा सकते हैं? जो ये क्यों नहीं समझा सकते हैं? ये कह के किस तरह इशारा किया? ब्रह्मा की तरफ इशारा किया, ब्रह्मा को समझाना है। जो समझने वाले हैं उनको ब्रह्मा का पाठ समझाना है, तो किस तरह इशारा किया? हाँ, त्रिमूर्ति में जो चार मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें सबसे मूर्ति ऊपर जो अव्यक्त मूर्ति है उसकी तरफ समझाया, इशारा किया कि ये नहीं समझाते हैं। क्यों नहीं समझाते हैं और क्यों नहीं उनको बुद्धि में बैठता है समझने वालों को? समझा? ये ठीक है, समझाओ, ये तुम्हारा बाबा है। किस तरह इशारा करें, किस तरह बताया ये तुम्हारा बाबा? और ब्रह्मा कुमारी भी तो यही समझाती है। क्या समझाती है? ये तुम्हारा बाबा किस तरह समझाते हैं? है? लिंगी की तरफ इशारा नहीं करते? जो बाबा ने कहा पहले पहले ये समझाओ, तो प्रदर्शनी में पहला चित्र 32 करोड़ वाला शिवलिंग नहीं रखते? रखती है कि नहीं है? तो ठीक समझाती है। अरे है,
रूप नहीं समझाती?
रूप नहीं समझाती? रूप तो दिया हुआ है चित्र में, क्यों? जो बिंदी रखी है उसके आसपास लिंग नहीं रखा है? वो लिंग को ही निराकार का रूप समझ लेती है। क्या क्या समझती है? कि जो लिंग है, बड़ा आकार है, वो ही निराकार की यादगार है। तो निराकार की यादगार, लेकिन ये नहीं समझती है कि वो निराकार की यादगार कैसी है। वो निराकार की यादगार निराकार बने हुए पुरुषार्थी की यादगार है या निराकार सदैव रहता है उसकी यादगार है? जो निराकार पुरुषार्थी है, निराकारी बन जाता है, उसकी यादगार है, तब उसे शिवलिंग कहा जाता है। नहीं तो निराकार को तो लिंग होता ही नहीं। लिंग साकार को होगा या निराकार को होगा? साकार को होता है, लेकिन साकार का लिंग जो है उसकी पूजा तब होती है जब वो अव्यक्त मूर्ति धारण करने वाला लिंग रूप बाप की 100% याद में ऐसा स्थिर हो जाए कि उसका जो फल आना चाहिए इंद्रिय का, वो फल आवे ही नहीं। विकारी सुख की स्मृति आवे ही नहीं, और उसका जो रिजल्ट है कर्म का, साकार बच्चा पैदा होना। क्या उस कर्मेंद्रिय का रिजल्ट क्या आता है? मनुष्य भी वही कर्मेंद्रिय से कर्म करते हैं, रिजल्ट क्या आता है? है? देह का बच्चा पैदा होता है या नहीं होता है? होता है। और वो जो लिंग दिखाया गया जिसकी पूजा होती है मंदिरों में, उसका रिजल्ट क्या होता है? वो अमोघ वीर्य है या पतित होने वाला है, वो तो अमोघ वीर्य है, उसका ऐसा बच्चा पैदा नहीं होता जो जन्म और मृत्यु में आने वाला हो। जन्म जरा मरण के दुखों से परे रहने वाला बच्चा पैदा होता है। कैसा ब्राह्मण बच्चा पैदा होगा जो जन्म मृत्यु और बुढ़ापे के दुख से परे रहेगा मृत्यु काल तक। तो वेद के बच्चे पैदा होते हैं, आत्मा रूपी बच्चे पैदा होते हैं या देह के बच्चे पैदा होते हैं? है? आत्म की स्थिति में स्थित रहने वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो बताओ ये तुम्हारा बाबा है। अच्छा देखो, अगर कहते हैं हाँ हमने समझा तो लिखो ये हमारा बाबा है, बेहद का बाबा है, सारा लिखाई लेना चाहिए, नाम लिखो, रूप लिखो, पूरा आईडी प्रूफ ले लेना चाहिए। अगर ठीक देता है तो निश्चय बुद्धि, अगर आईडी प्रूफ पूरा नहीं देता है तो निश्चय बुद्धि।